Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों और नियंत्रण उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार निखिल घानेकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
सर्दियों का मौसम आते ही वायु प्रदूषण की चिंता और गंभीरता बढ़ती हुई नजर इस तरह से आती है कि जब हमारे पास आंकड़े आते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या PM2.5, PM10 की बढ़ी मात्रा हवा में घुल रही है, जो हमें महसूस भी होती है, तो निश्चित तौर पर ये एक चर्चा और चिंता का विषय बन जाता है कि हम बात करें कि वायु प्रदूषण के मुख्य तौर पर जो प्रमुख कारण है वो क्या है और किस तरह से रणनीति के स्तर पर इसे कम करने को लेकर काम किया जा रहा है और दीर्घकालिक रणनीतियां किस तरह से इससे निपटने के लिए बनाई जा सकती हैं। तो आज हम वायु प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पत्रकार जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते हैं, निखिल घानेकर जी। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
तो सबसे पहला एक प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जो भारत में खासतौर पर शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसका आपको क्या प्रमुख कारण लगता है? क्या हाई एमिशन इसका एक प्रमुख कारण है, या फिर हम जबकि मौसम की बात कर रहे हैं और जब अक्सर ये देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में ही जो कोहरा है वो स्मॉग में बदल जाता है, तो क्या पर्यावरणीय कारण इस पर ज्यादा हावी होता है? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को?
जी, वायु प्रदूषण के जो अहम कारण है इसके पीछे, वो दोनों ही है, जो उत्सर्जन होते हैं अलग अलग स्रोत, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं उससे, और दूसरा जो आपने कहा कि पर्यावरण के जो मतलब मीटरोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं, जैसे कोहरा हो गया या हवा का रुख हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से ये जो मात्रा जो है इसकी बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता खराब होती है। अब इसके अगर हम लोग स्रोत की बात करें तो चार पांच जो स्रोत है वो सबसे अहम माने जाते हैं। पहले तो है जो वाहन है, इतनी बड़ी संख्या में तादाद में जो वाहन है हमारे रस्तों पे, और खास करके हम दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, और मैं अगर अधिकृत आंकड़ों की बात करूं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए थे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से, तो पूरी दिल्ली एनसीआर में 2.88 करोड़ व्हीकल्स है और ये सारे स्टैंडर्ड्स के हैं। इसका मतलब अगर हम समझना चाहते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट जो फ्यूल क्वालिटी हमारे देश में लागू है, BS6 जो है स्टैंडर्ड भारत स्टेज 6 और नीचे की तरफ अगर हम जाए, तो इन सबको मिला के ये इतने वाहन है। दूसरा अगर हम देखें तो औद्योगिक उत्सर्जन जो होता है दिल्ली एनसीआर में, दोबारा सारे राज्यों को मिला के हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये जो सारे मेरे ख्याल से 23-24 जो जिले हैं, इनमें जो प्रदूषण होता है औद्योगिक क्लस्टर्स से, वो एक बड़ा कारण है। तीसरा एक बड़ा कारण है जो छोटे कण है डस्ट से जो आते हैं, जो भूगोल है दिल्ली का उसके पश्चिमी ओर पे राजस्थान से बहुत सारे धूल के कण आते हैं और वो थार डेजर्ट से लेके बहुत लंबी सफर तय करके इधर तक पहुंचते हैं। दिल्ली में खुद शहर में जो कंस्ट्रक्शन होता है और छोटे तादाद से लेके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका अगर आप ठीक से अगर उसको पर्दे ना लगाए उसको, या फिर स्प्रिंकलिंग ना करे पानी का, तो वो सस्पेंड होते हैं पर्यावरण में, वातावरण में, और वो सनलाइट के नीचे बाकी जो उत्सर्जन होता है जैसे वाहनों से होता है उससे रिएक्ट होके भी और पोल्यूशन पैदा करती है, प्रदूषण पैदा करती है। चौथा एक बड़ा कारण होता है कि जो कूड़ा जो जलाते हैं खुले में लोग, उससे बहुत बड़ी हानि होती है। और सबसे बड़ा इसका अहम कारण यह है कि जो जलने की प्रक्रिया होती है वो ठीक से नहीं होती है। एक इसका अगर तुलनात्मक अगर उदाहरण दे तो इंडस्ट्री में ईंधन जो जलता है, जलने की प्रक्रिया जो होती है ज्यादा साफ होती है। बहरहाल जो वो कूड़ा जलता है, जो जिसमें प्लास्टिक भी जलता है, अलग अलग केमिकल्स उसमें रसायन होते हैं, तो वो भी उत्सर्जन होता है उसका जी। तो खुले में जो कूड़ा जलना है वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये चार पांच प्रमुख मैं कारण बताऊंगा। और पांचवा जो है, जो शहर के बाहर से जो आने वाला प्रदूषण है, जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमारे बिजली घर है, सरकारें जो है वो 300 किलोमीटर के दायरे में जो बिजली घर है उनका भी इम्पैक्ट जो है वो देखती है।
क्या आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं?
जी जी, मैं थर्मल पावर प्लांट बिजली घरों की बात कर रहा हूँ, जो कोयले से चलने वाले बिजली घर जो है, और इसका निश्चित तौर पे यहाँ पे भी असर होता है और सरकार की नीतियों में भी इसको मूल्यांकन किया जाता है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये मैंने जो गिनाए थे चार पांच जो अहम कारण है, इसमें अगर हम जोड़ते हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ जो है, जो कण है, पार्टिकुलर मैटर जिसको हम कहते हैं, वो अगर हवा का रुख अच्छी तरह से ना हो, अनुकूल ना हो, तो वो बाहर फैलने के लिए मदद नहीं होती है, जिसके वजह से एक तरह से एक चेंबर सा बन जाता है, एक वो कैद हो जाता है
बिल्कुल
जमीन के पास।
जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये जो पर्यावरणीय कारण मौसम के प्रभाव से होते हैं और साथ में बड़ी मात्रा में जो उत्सर्जन होता है उसके कारण पर्यावरण में वायु प्रदूषण की जो गंभीरता है वो बढ़ती चली जाती है, और सरकार ने इससे निपटने के लिए कई स्तरों पर काम किया है, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक ऐसी रणनीति है जो समय समय पर प्रदूषण का जब स्तर बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग वो लागू की जाती है। अभी इस वक्त जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 को लागू किया गया है, तो इस बारे में भी थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं कि किस तरह से ये चरणबद्ध तरीके से लागू की जाती है, और जब ग्रैप 4 अब इस वक्त लागू हो चुका है तो क्या कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं और किस हद तक ये एक, क्योंकि दीर्घकालिक हमें लॉन्ग टर्म उपाय तो करने ही होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म ये एक तरीका कितना प्रभावी हो सकता है और किस हद तक इससे हम एमिशन को कम कर सकते हैं?
जी, अगर हम ग्रैप की बात करें, जैसे वो कार्यप्रणाली है उसके तहत और जैसे उसका टर्मिनोलॉजी का जो डेफिनेशन है कि वो ग्रेडेड होता है, इसका मतलब है कि वो कब और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना होता है जमीन पे, वो इस पर निर्भर होता है कि हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है या कितनी ठीक है। तो अभी जैसे कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आया था कि दिल्ली की हवा 450 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं वो पार कर चुकी थी और वो पहुंच चुकी थी, जिसके वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी है जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करती है, उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रैप 4 हमें लागू करना चाहिए स्टेज 4। अब इसके तहत पूरी कंस्ट्रक्शन पे जो है वो प्रतिबंध लगता है, उसके अलावा जो डीजल वाहन है और जो अत्यावश्यक जो सुविधाएं ना देने वाली जो वाहन है उनको रोका जा सकता है। उसके बाद जो बच्चे, क्योंकि इसमें ज्यादा की तबीयत खराब ना हो तो प्रदूषण की वजह से, इसलिए उनको ऑनलाइन क्लासों की तरफ लिमिट किया जाता है ताकि वो स्कूल के लिए बाहर ना निकले, और मास्क के लिए एक निर्देश दिया जाता है कि सबको मास्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो एक्सपोजर होता है प्रदूषण से वो लिमिट हो। तो ये उसके अहम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के मुद्दे है।
जी, अगर हम व्हीकुलर पोल्यूशन यानी जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उसकी बात करें तो कितना प्रतिशत ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, और जिस तरह से अभी ग्रैप 4 में भी ये कहा गया है कि जो BS6 है जो उस तरह की उस मानक की गाड़ियां हैं वही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगी, तो इस तरह से हम कैसे व्हीकुलर पोल्यूशन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो किस हद तक हम वायु प्रदूषण में कमी ला सकते हैं?
जी, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है कि कौन सा जो स्रोत है वो कितना प्रदूषण को ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और इस पे अभी बल्कि चर्चा हो रही है कि लेटेस्ट जो है वो एक नया ताजा एक इस पे रिपोर्ट बनाया जाए, इसके लिए भी सरकार ने निर्देश दिए थे जो एजेंसियां है उनको। फिलहाल जो अब हम जिसपे डिपेंड कर रहे हैं वो है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और ARAI जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनकी एक 2018 की एक रिपोर्ट थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत सफर प्रोजेक्ट में जो रिपोर्ट बनाए गए थे जिसमें कौन से स्रोत कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे 2018 में ये दोनों रिपोर्ट लास्ट लेटेस्ट थे हमारे पास, और उसमें ये बताया गया था कि वायु प्रदूषण के लिए वाहन जो है वो तकरीबन 35-40% जिम्मेदार है
जी
दिल्ली NCR में जो होता है, जो सबसे बड़ा एक कारण माना गया है। उसके बाद डस्ट, जैसे हम जिसका जिक्र पहले कर रहे थे, ये बहुत एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि डस्ट जैसे हमने पहले भी सुनने वालों को बताया था कि ये बाकी जो प्रदूषण के कारण है उससे रिएक्ट होता है केमिकली और जो बाकी पोल्यूटेंट्स पैदा करता है। इसके साथ साथ जो थर्मल पावर प्लांट है, जो हमारे कोयले पे चलने वाले बिजली घर है, उनसे जो पदार्थ कण निकलते हैं वो भी बाकी जो प्रदूषण फैलाने वाली जो चीजें है उसके साथ रिएक्ट होके धूप में नए जो पोल्यूटेंट्स है वो पैदा करती है। तो ये मेन जो है 2-3 स्रोत है प्रदूषण के जो ये इन दो रिपोर्ट्स में बताए गए थे। अभी हाल ही में एक नए रिपोर्ट के लिए कमिश्निंग के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि फ्रेश इस पे एक अध्ययन हो कि कौन से जो है स्रोत सबसे ज्यादा इसके पीछे वजह है प्रदूषण के दिल्ली NCR में।
जी, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर या इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि चलन बढ़ा है। दूसरी ओर ग्रीन एनर्जी की भी बात करें तो उस ओर भी अब कुछ बातें या उस पर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है, तो आगे आने वाले समय में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर या एमिशन को कम करने को लेकर ये कितना बड़ा विकल्प बन सकता है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो हम कह सकते हैं कि व्हीकुलर जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकती है, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो जो इंडस्ट्रियल एमिशन हो या दूसरे तरह का जो एमिशन हम करते हैं कोयले या जो फ्यूल एनर्जी है, उसके विकल्प के तौर पर कैसे ये सामने आ सकता है?
इसके बारे में हम अगर बात करना चाहें तो बहुत ही इसमें साफ तौर पे सरकारी जो एजेंसियां हैं जैसे कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उन्होंने, या फिर दिल्ली में जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो समिति है सरकार की, और पर्यावरण मंत्रालय, ये जो दो तीन प्रमुख एजेंसीज है, तो उन्होंने निर्देश लगातार दिए है कि जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो ईंधन के तौर पे जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है वो तो 2023 में ही इस पे रोक लगा दी गई थी, और उनको कहा गया था इन सारे इंडस्ट्रीज को, ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो यूनिट्स होते हैं, कि उनको नेचुरल गैस जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो पीएनजी जो है, पाइप नेचुरल गैस, वो एक बहुत बड़ा विकल्प होता है ताकि जो साफ ईंधन का प्रयोग हो सारे औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरा, आपने ऐसे जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी ऑपरेटेड होती है या फिर जो चार्जिंग पे चलने वाली होती है, ये तो एक बड़ा विकल्प है ही, और इसके लिए भी ये पहल हो रही है कि कैसे ज्यादा इसको अपनाया जाए, इसलिए कैसे लोगों को इंसेंटिव दी जाए, इसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तीसरी एक बात है कि एनसीआर के बाहर के जिलों में भी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कमीशन ऑन एयर क्वालिटी ने एक सुझाव दिया था
जी
कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो साफ ईंधन हो, तो वहां के भी जिलों में उनके एक सुझाव दिए गए थे कि कोयला को रिप्लेस करके जो पाइप नेचुरल गैस है और बाकी जो बायोमास जो हम लोग वैसे कूड़े में फेंकते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के तौर पे। साथ ही साथ जो पराली जो जलाने का एक होता है हर साल, तो पराली काट के एनटीपीसी और बाकी जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें जो बॉयलर्स वगैरह में उसको बेलिंग करके उसका प्रयोग किया जा सकता है ईंधन के लिए, ये भी एक विकल्प अपनाया गया है जिसका अभी धीरे धीरे जो उपयोग जो है वो बढ़ रहा है।
जी, हम आपसे ये भी अब जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में, क्योंकि वायु प्रदूषण सिर्फ भारत की नहीं बल्कि कई देशों की समस्या रही है, जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं या शहरीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो ये चिंता बढ़ती है, दुनिया के कुछ देशों ने कैसे इसे टैकल किया, क्या उसमें सफल प्रयास रहे, और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जो भारत भी अपना सकता है अपने नीतिगत स्तर पर या वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, अगर आप किसी उदाहरण से समझा पाए तो।
जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि चीन का उदाहरण हम बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा सबको याद होगा कि बीजिंग में जब ओलंपिक हुए थे 2008 में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लिखा गया था कि कैसे ओलंपिक इतने बुरे वायु प्रदूषण के चलते हुए भी हुआ था, और उस समय चाइना की सरकारों ने कई कदम उठाने का निर्णय लिया और उनको परिणाम भी अभी दिख रहे हैं कि जो उनके बड़े बड़े शहर जो है, बीजिंग हो गए, शंघाई हो गए, तो उनमें बदलाव आया है। उसमें कुछ मैं गिनाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ईंधन जो है, तो कोयला का जो उपयोग है, तो उन्होंने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे कि कोयला का उपयोग कम करने के लिए उद्योगों को साफ ईंधन पर स्थानांतरित किया उन्होंने। उनका भी भूगोल जो है वो दिल्ली की तरह बहुत ज्यादा उनको मदद करने वाला नहीं था प्रदूषण को हवा से हटने के लिए। उन्होंने ये किया कि जो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बाहर हटाए जाए। दूसरा एक था कि वाहनों से प्रदूषण जो होता है उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही यूनिक एक लॉटरी सिस्टम लाई कि हर साल वाहन एक सीमित तौर पे ही नए आए सड़कों पे, इसलिए एक लॉटरी सिस्टम में जो लोग आवेदन देते थे और जिनको लॉटरी जीतने पर ही नई जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो मिलती थी, तो ये एक यूनिक उनका सिस्टम था। तीसरा था कि उन्होंने जो फ्यूल स्टैंडर्ड जो है, जैसे हमारे यहाँ भारत स्टेज 6 अभी आया है, उन्होंने उसके भी मानक जो है वो नए लागू किए, यूरो 6 के समतल जो है,
जी जी,
इक्विवेलेंट जो है चाइना 6 जो है, और पुरानी डीजल जो वाहन है उसको स्क्रैप करने के आदेश दिए। और इसके अलावा जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे दिल्ली में मेट्रो लगातार नेटवर्क बढ़ी रहा है, पर बसों की संख्या जो है वो उन्होंने चाइना में बहुत बढ़ाई थी बीजिंग
जी,
में
जी,
और जिसके वजह से लोगों को एक विकल्प उपलब्ध था कि वो अपने वाहन घर पे छोड़ के या स्क्रैप करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें अपने रोज के जीवन में।
निखिल घानेकर जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े, और वायु प्रदूषण की जो गंभीरता और चिंता है और उसके समाधान है उस पर आपने विस्तार से अपने राय हमारे श्रोताओं के सामने रखी, बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों और नियंत्रण उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार निखिल घानेकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।